आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि भारत तेजी के साथ बदलते हुए आलमी निजाम में मुस्तहकम तौर पर पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी का अव्वलीन उसूल सरकारी खिदमात को शहरियों के लिए मजीद दस्तियाब और मजीद हसास बनाना है। पार्लियामेंट ने मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के आम इंतजामिया के बिल और प्रोविजंस बिल की जन विश्वास तरमीम को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश की वाहिद राजधानी के तौर पर अमरावती को कानूनी हैसियत देने के बिल को भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा में एसआईआर मुहिम के दौरान अदलिया के अफसरान को यरगमाल बनाने पर मगरबी बंगाल इंतजामिया की नुक्ताचीनी की है। उसने इंतखाबी कमीशन को मरकजी तहकीकात करने के लिए इजाजत दे दी है। अदालत ने पैनल से मरकजी फोर्सेस तैनात करने को कहा है। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। भारत ने UNIFIL में तैनात अक्वामे मुत्तहिदा क़याम अमन फोर्सेस पर हालिया हमलों की मजम्मत की है और उनके तहफ्फुज़ और सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। और भारतीय मुक्केबाज आदित्य प्रताप यादव मंगोलिया में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत की तेजी के साथ बदलती हुई उमंगों का तकाजा है कि हुक्मरानी का एक ऐसा मॉडल हो जो न सिर्फ मौसर हो बल्कि इसमें शहरियों को मरकजी हैसियत हासिल रहे। जनाब मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 से खिताब करते हुए एक वीडियो पैगाम में ये बात कही।
आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है।
वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि रहन सहन में सहूलत और मयार जिंदगी को बेहतर बनाना हुक्मरानी में इब्तदाई तवज्जो का मरकज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की इंतहाई अहमियत के बारे में वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता 11 बरसों में टेक्नोलॉजी को सरकारी कामकाज, हुक्मरानी के ताने बाने, खिदमात की फराहमी और मईशत के साथ गहरे तौर पर मरबूत होने को उजागर किया।
हमने गवर्नेंस और डिलीवरी से लेकर इकोनॉमी तक टेक रिवॉल्यूशन की ताकत देखी है। अब AI की दस्तक के बाद ये बदलाव और तेज होने वाला है, इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना और उसका सही उपयोग करना ये पब्लिक सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। इसलिए AI के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग और निरंतर लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए काम हो रहा है। इसमें आप सभी की भागीदारी और सहभागिता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है।
एक हफ्ते तवील कर्मयोगी साधना सप्ताह का आज से आगाज हुआ है। ये तकरीब अमले और तरबियत के महकमे, सलाहियत साजी के कमीशन और कर्मयोगी भारत के जरिए मुश्तरका तौर पर मुनक्किद की जा रही है। इसका मकसद मुल्क भर में सिविल सर्वेंट्स की सलाहियत साजी, कारकर्दगी और काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाना है। ये तकरीब मिशन के योम तासीस और मिशन कर्मयोगी के 5 साल पूरे होने के मौके पर मुनक्किद हो रही है। पार्लियामेंट ने मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज आम इंतजामिया के बिल 2026 को लोकसभा में जबानी वोट से मंजूर किए जाने के बाद मंजूरी दे दी है। राज्यसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। इस बिल में इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे में डिप्यूटेशन के जरिए CAPFS में 50% ओहदों को पुर करने, नीज एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे में डिप्यूटेशन के जरिए कम अज कम 67% ओहदों को भरने की गुंजाइश रखी गई है। इसमें स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल सतह के तमाम ओहदों को डिप्यूटेशन के जरिए ही पुर किए जाने की गुंजाइश रखी गई है। बिल पास होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को मुत्तला किया कि ऐवान की कार्रवाई इस महीने की 16 तारीख को दोबारा शुरू होगी, जिसमें कुछ अहम कवानीन पर बहस की जाएगी। पार्लियामेंट ने जन विश्वास गुंजाइशों की तरमीम बिल 2026 को भी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने भी इस बिल को आज मंजूरी दी थी। इस बिल को गुज़श्ता لوک سبھا کی منظوری حاصل ہو گئی تھی۔ یہ قانون جرائم کو ختم کرنے اور خلاف ورزیوں کو باقاعدہ بنانے کے بہت سے قوانین میں ترمیم کرتا ہے، جس کا مقصد زندگی کو آسان کرنے اور کاروبار کرنے کے لیے بھروسے پر مبنی حکمرانی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس میں 23 وزارتوں کے ذریعے 79 مرکزی قوانین میں ترمیم کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ یہ بل ہلکی خلاف ورزیوں کو جرائم کے زمرے سے ختم کر کے آسانی کے ساتھ کاروبار کرنے اور آسان زندگی گزارنے میں مدد کرے گا۔ اس سے قبل بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے شکتی سنگھ گوہل نے کہا کہ حکومت نے یہ بل جلدی میں پیش کیا ہے۔ آر جے ڈی کے منوج کمار جھا، پی ڈی پی کے مستان راؤ یادو، وائی ایس آر سی پی کے گولا بابو راؤ، بی جے ڈی کے نرنجن بشی، ڈی ایم کے پی ولسن اور عام آدمی پارٹی کے اشوک کمار مٹل اور دیگر نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ اس کے بعد ایوان بالا کی کارروائی 16 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسی دوران آندھرا پردیش تنظیم نو ترمیمی بل 2026 کو پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو آج پہلے راجیہ سبھا میں زبانی ووٹ سے منظوری دے دی گئی تھی۔ لوک سبھا میں یہ بل پہلے ہی پاس کیا جا چکا ہے۔ یہ بل امراوتی کو آندھرا پردیش کی واحد راجدھانی کے طور پر قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ آج حکومت نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مابین اہم پیٹرو کیمیکل مصنوعات کو اس سال 30 جون تک مکمل طور سے کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی رکھا جائے گا۔ مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال سے متعلق بین وزارتی بریفنگ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بالواسطہ ٹیکس اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ کے رکن سنجے منگل نے کہا کہ یہ اقدام صارفین کو ان کی حتمی مصنوعات کے لیے بھی راحت فراہم کرے گا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں خام تیل کی دستیابی معمول کے مطابق ہے اور ریفائنریز زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں تخفیف کی ہے تاکہ قیمتوں کو مستحکم رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئندہ 7 دنوں کے لیے خام تیل کی باقاعدہ فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے انتظامات کیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ 845 طالب علموں سمیت تقریباً 1200 بھارتی باشندوں کو ایران سے نکلنے کے لیے زمینی سرحدوں کے ذریعے آرمینیا اور آذربائیجان میں داخل ہونے میں مدد فراہم کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے خلیجی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم مہاجن نے کہا کہ حکومت خلیج اور مغربی ایشیا میں صورتحال پر قریبی نظر رکھ رہی ہے، جس میں بھارتی باشندوں کے تحفظ اور بہبود کو اعلیٰ ترجیح حاصل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج مغربی بنگال کے مالدا ضلع میں پیش آئے ایک واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے، جہاں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر عمل میں مصروف عدلیہ کے 7 عہدیداروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ عدالت عالیہ نے اسے قابل مذمت عمل قرار دیا۔ مذکورہ واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ریاستی انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اس معاملے پر کارروائی نہ کرنے پر ریاستی چیف سیکرٹری، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر افسران سے جواب طلب کیا ہے۔ تمام افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو سپریم کورٹ کے سامنے ورچوئل وسیلے سے پیش ہوں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے، جس میں جسٹس جوائے مالا باغچی اور وپل ایم پنچولی شامل تھے، انتخابی کمیشن کو اس افسوسناک واقعے میں سی بی آئی یا این آئی اے کے ذریعے تحقیقات کرانے کی اجازت دی۔ بینچ نے انتخابی کمیشن سے کہا ہے کہ وہ ایس آئی آر کے عمل میں مصروف عہدیداروں، ان کے اہل خانہ اور دیگر عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں کہیں سے بھی لے کر مرکزی فورسز کو تعینات کرے۔ آسام، مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو اور پدوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ آسام میں اسمبلی کی تمام 126 سیٹوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں چناؤ ہوں گے۔ کوانگ اسمبلی حلقہ آسام کی اہم ترین سیٹوں میں سے ایک ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
اسمبلی حلقہ نمبر 89 کھوانگ آسام کے 126 اسمبلی حلقوں میں سے ایک ہے، جہاں آئندہ انتخابات کے لیے 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ کھوانگ ڈبرو گڑھ کی اہم سیٹ ہے اور بنیادی طور پر یہ دیہی اسمبلی سیٹ ہے۔ 2023 کی حلقوں کی حد بندی کے بعد سابق موران اسمبلی حلقے سے کچھ گاؤں کے اضافے یا ان کو ہٹانے کے بعد اسے کھوانگ نام دیا گیا تھا۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں کھوانگ سے 5 امیدوار میدان میں ہیں۔ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں اس حلقے سے 6 امیدوار میدان میں تھے، جن میں بی جے پی کے چکردھر گوگوئی، कांग्रेस के परंजल घोटवार, आसाम जातीय परिषद के संजीव चंगमई और तीन आजाद उम्मीदवार शामिल थे। चक्रधर गोगोई ने 49% वोटों से चुनाव जीता था और 81% राय दहिंदगान ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया था। गुवाहाटी से अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर लीडर बीजेपी लीडर अमित शाह दो रोजा दौरे पर आज सपहरा शाम पहुंच गए हैं। वो असेंबली इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दीगर उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। एजीपी के उम्मीदवार केशव महांता की हिमायत में नगांव जिले की कालियाबोर हलके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी दरअंदाजों के खिलाफ है, अलबत्ता वो असम के असल मुसलमान मकीनों के खिलाफ नहीं है। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पार्टी की अपने इक्तदार के दौरान आसाम को नजरअंदाज करने के लिए नुक्ताचीनी की। उन्होंने बताया कि बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए हुकूमत ने पिछले 10 सालों के दौरान आसाम के लिए 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की है। पुदुचेरी में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा और सियासी लीडरान अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत के लिए रोड शोज, अवामी मीटिंगें और वोटरों तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
कांग्रेस पार्टी की जानिब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के मेंबर मुकुल वासनिक ने आज पुदुचेरी में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बेस्ट पुदुचेरी के वादे के बावजूद पुदुचेरी पिछले 5 साल के दौरान मुल्क में बदतर इंतजामिया वाला इलाका बन गया है। बीजेपी के लिए पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर सुरेश गोपी ने माहे बीच पर फैमिली इज्तिमा की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि माहे को कौमी शाहराओं के प्रोजेक्टों से काफी फायदा हुआ है। उन्होंने बुनियादी ढांचे और आवामी फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू किए गए अहम मरकजी इकदाम को उजागर किया। इस दौरान बीजेपी और एनडीए के उसके इत्तेहादी पार्टियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनाब मोदी कल इंतखाबी मुहिम के लिए पुदुचेरी पहुंचेंगे। वो चेन्नई से शाम में पुदुचेरी पहुंचेंगे और अवामी मीटिंग को निज पार्टी कारकुनों से खिताब के अलावा रोड शो करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी इंतखाबी मुहिम के लिए बितरतीब 4 और 6 अप्रैल को पुदुचेरी पहुंचेंगे। पुदुचेरी से बिपिन एसनाथ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
आज भारत ने UNIFIL में तैनात अक्वामे मुत्तहिदा कयाम अमन फोर्स पर हालिया हमलों की मजम्मत की है, नीज उनकी सलामती और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत कयाम अमन फोर्स के खिलाफ जराइम के लिए एहतसाब पर जोर देता है क्योंकि भारत कयाम अमन में तआवुन करने वाले सबसे बड़े और तवील मुद्दती शराकत दारों में से एक है। जनाब जायसवाल ने उजागर किया कि UNIFIL में 600 भारतीय फौजी हैं जिन्होंने अक्वामे मुत्तहिदा की तय करदा कयाम अमन मिशनों के तहत आलमी पैमाने पर कयाम अमन और सिक्योरिटी में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत LPG, LNG और दीगर मसनूआत से भरे भारतीय बहरे जहाजों के उस खित्ते में बिला रुकावट और महफूज सफर के लिए ईरान और दीगर मुल्कों के साथ राबते में है। उन्होंने ये बात उजागर की कि 6 भारतीय बहरी जहाज बहिफाजत आबनाए हुरमुस को पार कर चुके हैं और भारत मुतालिका फरीकों के साथ राबता कायम रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इस बात से भी मुतला किया कि बरतानिया ने आबनाए हुरमुस से मुतालिक बातचीत के लिए भारत समेत बहुत से मुल्कों को मदु किया है। मुक्केबाजी में मंगोलिया के उलानबटूर में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के आदित्य प्रताप यादव सऊदी अरब के मूसा अल हौसफ को शिकस्त देकर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के अब्दुल्ला मदामिनोव से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि भारत तेजी के साथ बदलते हुए आलमी निजाम में मुस्तहकम तौर पर पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी का अव्वलीन उसूल सरकारी खिदमात को शहरियों के लिए मजीद दस्तयाब और मजीद हसास बनाना है। पार्लियामेंट ने मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के आम इंतजामिया के बिल और प्रोविजंस बिल की जन विश्वास तरमीम को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश की वाहिद राजधानी के तौर पर अमरावती को कानूनी हैसियत देने के बिल को भी मंजूरी दी है। असम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। भारत ने UNIFIL में तैनात अक्वामे मुत्तहिदा कयाम अमन फोर्सेस पर हालिया हमलों की मजम्मत की है और उनके तहफ्फुज़ और सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। और भारतीय मुक्केबाज आदित्य प्रताप यादव मंगोलिया में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।